तारीख 16 अगस्त दिन रविवार, दिन भर के साथ मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गृह मंत्री के दफ्तर में हुआ धमाका, गृह मंत्री शुजा खानजादा समेत 12 की मौत। सरकार ने कहा चरमपंथियों के खिलाफ अभियान चलाने का मिला खामियाजा।
उन्होंने खुद लीड किया कई ऑपरेशंस को टेररिस्टों के खिलाफ और बड़े हर्दिल अजीज थे वो पार्लियामेंट में और अपने इलाके में, उन्होंने कई बार इलेक्शन जीता था।
भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी जारी, अब तक 6 लोगों की मौत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल को मिला रजत पदक। फैला उजियारा की 6 कड़ी में आज सुनेंगे भारतीय चिकित्सा विज्ञान के आदि पुरुष चरक पर खास रिपोर्ट।
त्रिविध रोग विशेष विज्ञान।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठन लश्कर ए जांगवी ने पंजाब प्रांत में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें पंजाब के गृह मंत्री शुजा खानजादा की मौत हो गई। इस प्रतिबंधित गुट का कहना है कि उसने पिछले महीने पुलिस कार्रवाई में हुई अपने नेता की मौत का बदला लिया है। खानजादा के चुनाव क्षेत्र अटक में उनके दफ्तर को उस समय निशाना बनाया गया जब उनसे मिलने सैकड़ों लोग वहां आए हुए थे। धमाके में कुल 12 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया का एक विमान पापुआ में लापता हो गया है, इसमें 54 लोग सवार हैं। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से कुछ देर पहले त्रिगाना एयर सर्विस के इस विमान का लैंडिंग से कुछ देर पहले ही संपर्क टूट गया था। त्रिगाना एयर सर्विस के प्रवक्ता के मुताबिक पहाड़ों में खराब मौसम की वजह से विमान खोजने के काम में मुश्किलें आ रही हैं और सोमवार सुबह से बचाव कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। विमान ने प्रांतीय राजधानी जयापुरा के सिंतानी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और ये दक्षिणी शहर ओक्सिबिल जा रहा था। एयरलाइन की एक फ्लाइट अटेंडेंट एलना मेसेरा का कहना है, मेरे पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि विमान अब भी है और विमान में सवार लोग बच गए हैं। ये थे एयरलाइन की एक फ्लाइट अटेंडेंट एलना मेसेला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की 2 यात्रा पर अबूधाबी पहुंच गए हैं। इस दौरान वो यूएई के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत में व्यापार और सुरक्षा जैसे आपसी सहयोग के मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने के अलावा वहां रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। सामरिक महत्व वाले इस खाड़ी देश की 34 बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। चीन के प्रधानमंत्री ली केजियांग तियानजिन शहर के दौरे पर गए हैं, जहां बुधवार को हुए जबरदस्त धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। करीब 100 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, इनमें बड़ी संख्या दमकल कर्मियों की भी है। पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक जहरीला रसायन सोडियम साइनाइड पाए जाने की पुष्टि की है। इसके अलावा एक इंजीनियर ने पुष्टि की है कि एक और जहरीला रसायन हाइड्रोजन साइनाइड भी तियानजिन शहर की हवा में पाया गया है। कोलकाता में पुलिस ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की, जिससे गिनने में 21 घंटे लग गए। भ्रष्टाचार निरोधी पुलिस ने ये पैसा एक स्थानीय इंजीनियर के घर से तकियों, गद्दों, सोफा, छत और दीवारों के से बरामद किया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव सुन सकते हैं। पाकिस्तान में आज एक और बड़ा चरमपंथी हमला हुआ और आज इसके निशाना बने पंजाब प्रांत के गृह मंत्री शुजा खानजादा। दोपहर में खानजादा के दफ्तर में हुए आत्मघाती हमले में कुल 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। खानजादा के चुनाव क्षेत्र अटक में उनके दफ्तर को उस वक्त निशाना बनाया गया जब उनसे मिलने सैकड़ों लोग वहां आए हुए थे। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठन लश्कर ए जांगवी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक रिपोर्ट के साथ हैं प्रगति सक्सेना।
पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के गृह मंत्री शुजा खानजादा की अटक स्थित उनके दफ्तर में हुए बम विस्फोट में मौत हो गई है। इस विस्फोट में एक पुलिस अधिकारी समेत कम से कम 12 और लोग मारे गए हैं। ये विस्फोट तब हुआ जब गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से करीब 100 लोग उनसे मिलने आए हुए थे। उनकी मौत की पुष्टि करते हुए पंजाब मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर सईद इलाही ने कहा,
हमारे जो बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन थे, बड़े बहादुर आदमी थे कर्नल शुजा खान दादा, उनकी शहादत हो गई है और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो बड़ी अफसोसनाक खबर है ये। आप जानते हैं कि उन्होंने खुद लीड किया कई ऑपरेशंस को टेररिस्टों के खिलाफ और बड़े हर्दलअजीज थे वो पार्लियामेंट में और अपने इलाके में, उन्होंने कई बार इलेक्शन जीता था, तो वो एक अजीम शख्सियत थे, वो हमारे साथ नहीं रहे।
ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे इमारत की छत ढह गई और आस पड़ोस की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। ये विस्फोट कैसे हुआ इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये एक आत्मघाती हमला था।
उस वक्त जिस वक्त ये बम ब्लास्ट हुआ तो मैं यहाँ पर थोड़े से फासले पर अड्डे पर मौजूद था, तो यानी बहुत शदीद सा धमाका था। तो थोड़ी देर बाद फिर मालूम हुई कि वज़ीर दाखला पंजाब फख्र कर्नल शुजा खानदार साहब पर बम ब्लास्ट हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो अपनी मदद आपके ज़रिए से, जो खानदार साहब के लोग हैं उनके कारकुन थे, अपनी मदद आपके ज़रिए से जो है ना उन डेड बॉडीज़ वगैरह जो है ना रेस्क्यू कर रहे थे। तो फिर पुलिस वगैरह भी आ गई, उसके बाद फिर रेस्क्यू 1122 वाले आए और फिर अफवाज पाकिस्तान पहुंची।
प्रतिबंधित चरमपंथी गुट लश्करे जंगवी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्करे जंगवी का कहना है कि पिछले महीने पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान उनके नेता मलिक इशाक की मौत का इस तरह बदला लिया गया है। बीबीसी के इस्लामाबाद संवाददाता का कहना है कि शुजा खानजादा को पंजाब में चरमपंथ विरोधी अभियान के प्रमुख के तौर पर देखा जाता था। शुजा खानजादा पाकिस्तान में इस साल चरमपंथी हमले में मारे जाने वाले सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं।
पंजाब प्रांत के गृह मंत्री धमाके के बाद काफी देर तक मलबे में ही दबे रहे, उसके बाद उनकी मौत की खबर आई। राज्य के गृहमंत्री के दफ्तर तक चरमपंथी पहुंचने में कैसे कामयाब रहे, क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी थी, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक से।
जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम जरूर थे और पुलिस जो है वो ये भी कह रही है कि सिक्योरिटी काफी तसली बख्श थी, लेकिन आज जो पंजाब पुलिस के चीफ हैं उनका ये कहना है कि आज उनका वहाँ पर अपने जो उनका डेरा है जहाँ पर एक सियासी दफ्तर जिसको कहा जा सकता है, वहाँ पर उनके बैठने का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि कुछ वहाँ पर उनके रिश्तेदारों में कुछ कैजुअलिटीज हो गई थी जिसके अफसोस के लिए लोग आ रहे थे। तो उसकी वजह से जब लोग काफी तो वहाँ पर पहुंचे तो इस दौरान जो सुसाइड बम्बर्स हैं दो, वो भी वहां पर आ गए और उनमें से एक ने जो उसके घर के बाहर खड़ा था, ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसने खुद को एक्सप्लोड कर लिया जिसकी वजह से वो दीवार भी गिर गई और दीवार के साथ वो उसकी पूरी छत भी गिर गई।
खानजादा साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो काफी जो एक कैंपेन चल रहा था टेररिस्टों के खिलाफ उसको लीड कर रहे थे और उसको लेकर के वो एग्रेसिव भी थे, तो क्या ये वजह भी है क्या इस इनको निशाना बनाने के पीछे?
जी इस पॉसिबिलिटी को तो किसी तौर पर भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, और जब से ये पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बना है उसमें खासतौर पर पंजाब में जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं तो उसमें ये जो शुजा खानजादा हैं ये काफी इनका लीड रोल रहा है उसमें। और कुछ दिन पहले जो लश्कर जंगवी के अहम लीडर थे मलिक इशाक और दूसरे जो बंदे हलाक हुए थे, तो उसके बाद इन्हें काफी ज्यादा थ्रेट मिल रहे थे जिसके बारे में उन्हें आगाह भी किया गया था, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो सिक्योरिटी तो उनके पास थी लेकिन उस सतह की नहीं थी, उस लेवल की नहीं थी जिस जैसी होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि इस वाकये की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी इंटेलिजेंस एजेंसियों से कहा है कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उन्हें फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। तो अभी तक तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो नहीं बनी लेकिन इम्कान यही है कि जल्द बन जाएगी।
और ये लश्कर जहांगीर ने जो जिम्मेदारी ली है इसकी, तो इस पे सरकार का क्या कहना है, क्या कोई उनके खिलाफ फिर नया एक्शन शुरू किया जाएगा, कैंपेन शुरू किया जाएगा?
देखिए जो 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 क्रैक डाउन हुआ है खासतौर पर पंजाब में उनमें ज्यादातर तो लोग इसी तंजीम से एफिलिएटेड थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पुलिस का भी और गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि इसमें किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वॉल्व होने का जो पॉसिबिलिटी है उसको किसी तौर पर भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। और जहां जो आबाई इलाका था वहां के करीब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका ये मानना है कि वहां पर भी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो काफी एक्टिव हैं और वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। तो अभी फिर वहाँ उस इलाके में भी ऑपरेशन के बारे में अभी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन बैंड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम कर रही हैं, उनका डेटा वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है।
ये थे इस्लामाबाद से BBC संवाददाता शहजाद मलिक। भारत प्रशासित कश्मीर के पुंछ ज़िले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में मरने वाले लोगों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। गोलीबारी में घायल एक और महिला ने रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से ये गोलीबारी लगातार चल रही है। ताज़ा जानकारी के लिए मैंने बात की श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर से।
कल तो ये सब्जियां सेक्टर है पुंछ का, वहां पे फायरिंग हुई थी और आज जो है सुबह, जैसा कि हमें सैनिक अधिकारियों ने बताया कि ये बसनोई सेक्टर में दोबारा फायरिंग हुई है जिसमें एक और व्यक्ति की मौत हुई है और कुल मिलाकर कल से अभी तक 6 व्यक्ति मारे गए हैं इसमें जो नागरिक हैं वहां के, और कुछ मकानों को भी वहां नुकसान पहुंचा है। जो इस्तेमाल हो रहा है फायर आर्म, जैसा कि सैनिक अधिकारियों ने बताया, वो मोर्टर MM जो है उसकी स्ट्रेंथ 82 है, तो उसकी वजह से कुछ मोर्टर गोले जो हैं बस्तियों में गिर रहे हैं, उससे कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है।
रियाज साहब, खबर ये भी आ रही थी कि फायरिंग की वजह, लगातार फायरिंग हो रही है, उसकी वजह से कुछ लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी है?
जी, हमने बात की डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन कोतवाल जी के साथ, तो उन्होंने बताया कि पलायन की जो खबरें हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पलायन करना रिस्क है। जो वहां पे सिक्योरिटी एडवाइजरी लोगों को दी गई है वो मास लेवल पे माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गांव जो है वो इन द लाइन ऑफ फायर है, जो दूसरी तरफ से गोलियां आ रही हैं या गोले आ रहे हैं, तो उसमें पलायन करना रिस्क होगा, इसलिए पलायन नहीं हुआ है।
तो वहां जो आम लोग हैं उनको इस फायरिंग से ना नुकसान हो, इसके लिए किस तरह की सिक्योरिटी है और क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
जो जिला प्रशासन है और जो डिविजनल प्रशासन है, उन्होंने एक इवैक्यूएशन स्ट्रेटजी को तैयार रखा हुआ है, जैसा कि कुछ शिविरों को की निशानदेही की गई है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे कुछ स्कूल है या पंचायत घर है या अस्पताल है जिनमें किसी इमरजेंसी के वक्त उनको रखा जाएगा। लेकिन आज उम्मीद की किरण ये नजर आई, क्योंकि आज सुबह तो फायरिंग हुई है लेकिन अभी फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ है और एक पूरा हॉल्ट है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी अधिकारियों से बात हुई है वो कहते हैं कि रात में हो सकता है गोलीबारी हो, लेकिन अभी तक तो शांति बरकरार है।
तो फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है जम्मू कश्मीर में। ये थे रियाज मसरूर। रियाज मसरूर कह रहे थे कि पलायन की खबरें नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और लोग दहशत में भी हैं। पुंछ ज़िले के कुछ लोगों का कहना था,
परेशानी ये है, सुबह से छुप कर बैठे हैं, ना माल मवेशी का कोई चारा, ना घास कटने का चारा, छुप के बैठे हैं, ना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बैठे हैं, बच्चों को कैसे भेजें स्कूल, पाकिस्तान की फायरिंग शुरू है सुबह से,
एक हफ्ते से फायरिंग शुरू है, तो सुबह निकलने बाहर जब आया मैं तो गोलाबारी से मैं तो जख्मी हो गया, मुझे बाल बच्चे का कोई पता नहीं है या कि वो भी मर गया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में फायरिंग से दहशत में है लोग। कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे खेल जगत की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारी विशेष श्रृंखला फैला उजियारा की। फैला उजियारा, प्रोफेसर सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस, इसकी 6ठी कड़ी में जानिए भारतीय चिकित्सा जगत के आदि पुरुष चरक के बारे में, जिन्होंने रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया ताकि मनुष्य स्वस्थ और रोग मुक्त रह सके। उनकी रचना चरक संहिता अच्छी जीवन शैली और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए विश्वकोश है। आयुर्वेद भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। मिलिए आयुर्वेदाचार्य चरक से, प्रस्तुत करता है मोहनलाल शर्मा।
ये बहुत धूल और शोरगुल से भरी जगह है जहां दिल्ली मेट्रो का एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है। ये आधुनिक भारत में तेजी से हो रहे शहरी विकास की एक तस्वीर है। ये एक दवाखाना है जहां लोगों का इलाज पुरातन पद्धति से किया जाता है, वो पद्धति जो 2000 साल पहले जन्मे एक व्यक्ति की सोच पर आधारित है। पश्चिमी जगत इस चिकित्सा पद्धति को वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली कह सकता है। ये स्वस्थ शरीर के बारे में भारतीय सोच का एक हिस्सा है। जिसकी जड़ें बुद्ध के युग तक और शायद उससे भी अधिक गहरी हैं। इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत होती है उस व्यक्ति के साथ जिन्हें भारत में चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है, जिन्हें चरक के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद प्राचीन भारत में चिकित्सा के तौर तरीकों का संग्रह है और इसी में हमें चरक के बारे में जानकारी मिलती है। वेद का अर्थ है ज्ञान और आयु माने लंबा जीवन। इस प्रकार आयुर्वेद एक तरह की मार्गदर्शिका है जो स्वस्थ जीवन पाने का तरीका बताती है। आयुर्वेद भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित 3 चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, बाकी 2 हैं सिद्ध और यूनानी। भारत में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आयुर्वेद आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चरक ने आयुर्वेद के बुनियादी सिद्धांत ईसा से कई सदियों पहले बनाए थे, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में आयुर्वेद एक पेशा बन गया। आज ये भारत सरकार की नीति का हिस्सा है और भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय आयुर्वेद के प्रशिक्षण के लिए धन भी देता है। जिस दवाखाने की हम बात कर रहे थे वो दिल्ली से सटे फरीदाबाद में है, नाम है जीवा इंस्टीट्यूट।
It's a world with computer terminals, people on the phone taking telephone consultations.
यहाँ कंप्यूटर लगे हैं, लोग फोन पर चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं। यहाँ नीम की लकड़ी से बने काउंटर हैं, मिट्टी की दीवारें हैं और बांस का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। भीतर से ये किसी खूबसूरत गांव की तरह नजर आता है जहाँ आधुनिक तकनीक भी मौजूद है।
आपकी तरफ से रिस्पांस ना मिलने के कारण आपकी कॉल डिस्कनेक्ट की जा रही है।
पेट में दर्द की शिकायत के साथ एक महिला यहाँ फोन करती है। एक व्यक्ति उस महिला के लक्षणों के बारे में डॉक्टर को बताता है। यहाँ हर दिन औसतन 2000 फोन आते हैं। जानकार उन्हें सुनते हैं और परामर्श देते हैं। ये परामर्श चरक संहिता पर आधारित होते हैं जिसे ईसा पूर्व 2री या 3री सदी में लिखा गया था। जीवा इंस्टीट्यूट में काम करने वाले मनी सिंह कुमार कहते हैं,
हम उपचार के लिए अभी भी प्राचीन दर्शन और सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बुनियादी बातों को अब आधुनिक दवाओं से जोड़ा जा सकता है।
चरक संहिता में जिन पौधों का उल्लेख किया गया है वो हिमालय के पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चरक उत्तर भारत के रहने वाले थे। एक चीनी स्रोत में कहा गया कि चरक किसी राजा के चिकित्सक थे जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर भारत के मौजूदा राज्य उत्तर प्रदेश तक फैला था, लेकिन ये पक्के तौर पर नहीं पता चलता कि चरक नाम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल हुआ है या एक विशेष चिकित्सा पद्धति अपनाने वाले लोगों के लिए। चरक संहिता से संकेत मिलते हैं कि ये एक से अधिक लोगों की उपज है। वियना यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च फेलो डोमिनिक वुजास्तक कहते हैं,
This is a long encyclopedic work with many chapters covering all aspects of human life.
ये एक बृहद ज्ञानकोश की तरह है जिसमें कई अध्याय हैं, जिनमें मानव जीवन के हर पहलू पर बात की गई है। इसमें आनुवंशिकता का उल्लेख है, आप दीर्घायु कैसे हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रकृति के विरुद्ध जाने से किस तरह भांति भांति के रोग पैदा होते हैं। इस तरह के और भी कई अध्याय हैं इसमें।
ये सब कुछ संस्कृत में है और मंत्रों की तरह लिखा हुआ है।
इतिहास माह भगवान आत्रेयः त्रिविधम् खलु रोग विशेष विज्ञानम् भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम् अनुमानम् चेति।
चरक ने इस ज्ञान को प्रश्न उत्तर की तरह आगे बढ़ाया। ये ठीक वैसा ही है जैसा संवाद एक गुरु और शिष्य के बीच होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और मरीज को सीधे जांच के लिए भेजने की बजाय उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं।
In this age, the people don't need to travel, but they can talk on phone.
डॉक्टर प्रताप चौहान जीवा इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, जिन्होंने 20 साल पहले एक गैराज से आयुर्वेद का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उनका पेशा अच्छा खासा जम गया।
So this is the चरक संहिता?
ये चरक संहिता है, मैंने कई बार इसे पढ़ा है क्योंकि ये मुझे पसंद है। ये आयुर्वेद की परिभाषा है जिसमें चार चीजों पर जोर दिया गया है। उपयोगी जीवन क्या है, अनुपयोगी जीवन क्या है, खुशहाल जीवन क्या है और दुखी जीवन क्या है। इसमें दीर्घायु होने के तरीकों के बारे में बताया गया है। चरक संहिता को आप आयुर्वेद की बाइबल की तरह मान सकते हैं।
शरीर और उसके कामकाज के बारे में चरक का मॉडल उस मॉडल से एकदम अलग है जैसा हम सोचते हैं। आयुर्वेद के बुनियादी सिद्धांत वात, पित्त और कफ पर आधारित हैं। आयुर्वेद मानता है कि मानव शरीर के भीतर इन तीनों में से कोई एक भी असंतुलित होता है, बीमारी तभी पैदा होती है। 19वीं सदी समाप्त होते होते आयुर्वेद एक आधुनिक पेशे की तरह उभरा। भारत में तब ब्रिटिश हुकूमत थी। पश्चिम जगत में भी 1890 के दशक में चरक की चर्चा थी। न्यूयॉर्क में डॉक्टरों ने चरक क्लब बनाया था। भारत में पढ़े लिखे सवर्ण राष्ट्रवादी लोगों में भी आयुर्वेद लोकप्रिय हुआ, जिन्होंने ब्रितानी शासन से लड़ने के लिए अपने इतिहास और परंपराओं को टटोलना शुरू किया। महात्मा गांधी ने भी आयुर्वेद को अपनाया। उन्होंने अ गाइड टू हेल्थ नाम की एक किताब लिखी जो व्रत उपवास के आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है।
What's remarkable about this telemedicine center is that each is
इस टेलीमेडिकल सेंटर की खास बात यह है कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत मेडिकल परामर्श दिया जाता है। डॉक्टर हर कॉलर की बात सुन रहे हैं जो उन्हें अपने मर्ज के लक्षण बताता है और इन लक्षणों के आधार पर वो हर मरीज का एक निजी ब्यौरा तैयार करते हैं। इस ब्यौरे को देखकर ही डॉक्टर ये निर्धारित करते हैं कि मरीज को समस्या क्या है, कौन सी खास दवाई एक मरीज को दी जानी चाहिए। परीक्षणों के दौरान कई आयुर्वेदिक उपचार मानक स्तर के पाए गए हैं और कई भारतीयों का मानना है कि आयुर्वेद पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का पूरक है। ऐसा मानने वालों में डॉक्टर संकर्षण वेलायथन भी शामिल हैं, जो जाने माने हार्ट सर्जन हैं। वो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
आयुर्वेद का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि व्यक्ति की प्रकृति क्या है। गर्भ के समय ही हर व्यक्ति की तासीर तय हो जाती है, जो बदलती नहीं है। आयुर्वेद में इसे ही शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार की तासीर कहा गया है। इसी से बीमारी तय होती है। कुछ लोगों की टीबी यानी तपेदिक जल्दी ठीक हो जाती है तो कुछ की देर से ठीक होती है। हर व्यक्ति को एक जैसी दवा से फायदा नहीं होता।
इसके बावजूद भारत में लोगों ने और मीडिया ने भी आयुर्वेद को हाथों हाथ लिया है। डॉक्टर चौहान अपने जीवा इंस्टीट्यूट में टेलीफोन पर परामर्श देने के अलावा एक टीवी शो भी करते हैं। भारतीय जीवन में तनाव और प्रतिस्पर्धा ने आयुर्वेद को जगह बनाने में काफी मदद की है। भारत के शहरी जीवन में मैं ऐसे कई पेशेवर लोगों को जानता हूं जो हर दिन 12 घंटे काम करते हैं। कई लोगों के लिए आयुर्वेद माँ की मौजूदगी की तरह है और फिर इसमें प्राचीन भारतीय परंपरा का गौरव भी है, जिससे आयुर्वेद को अक्सर बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में साल 2014 में आधुनिक तकनीक से लैस एक अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्राचीन भारतीय दवाओं पर जोर दिया था। तब उन्होंने भगवान गणेश का उदाहरण दिया, जिनकी देह मानव की और सिर हाथी का है, और इसे उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत बताया था।
पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको स्वस्थ रखने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है।
टीवी पर डॉक्टर चौहान का विशेष कार्यक्रम शुरू हो चुका है जिसमें वो चिकित्सीय परामर्श देंगे। डॉक्टर साहब आज विटामिन बी की कमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि फोन कॉल्स आने लगे हैं।
पेट की समस्या आपको कितने टाइम से है?
आयुर्वेद में किए गए कई वादों में ये वादा भी शामिल है कि चिकित्सक अपने मरीज से एक व्यक्ति के तौर पर ही बात करेगा। दूसरी ओर आर्थिक लाभ की दृष्टि से तेजी से बढ़ते अस्पताल हैं, जहां डॉक्टर अक्सर मरीज को देखने से पहले ही अपनी धारणा बनाकर बैठे होते हैं, जबकि चरक कहते हैं जीवन ऐसा हो कि दवा की जरूरत ही ना पड़े और इसके लिए बुद्धि और सही निर्णय की आवश्यकता होती है।
आपने जीवा आयुर्वेदा में कॉल किया था डॉक्टर प्रताप चौहान जी के टीवी शो के दौरान? पहली बार कॉल किया था आपने?
तो फैला उजियारा की ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अभी अभी खबर मिल रही है कि आज दोपहर इंडोनेशिया का जो विमान लापता हो गया था उसका मलबा मिल गया है। ये विमान इंडोनेशिया के पापुआ इलाके में लापता हो गया था जिस पर 54 लोग सवार थे। हालांकि अभी पता नहीं चला है कि इस दुर्घटना में कोई जीवित बचा है या नहीं। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि विमान का मलबा ऑक्सिबिल के पहाड़ी इलाके बिंतांग में मिला। स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे से कुछ देर पहले ट्रिगाना एयर सर्विस के इस विमान के साथ संपर्क टूट गया था। विमान ने प्रांतीय राजधानी जयापुरा के सिंतानी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और ये दक्षिणी शहर ऑक्सिबिल जा रहा था। और अब खेल समाचार। खेल की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं आदेश कुमार गुप्त। जी आदेश जी, सानिया आज साइना नेहवाल, माफ कीजिएगा
जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, चाहे साइना नेहवाल हो चाहे सानिया मिर्जा हो, दोनों ही खिलाड़ी आज जीते जीते रह गए। और दरअसल बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो एक शानदार इतिहास बनाने से बस एक कदम दूर रह गई और उन्हें इंडोनेशिया में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दूसरी वरीयता हासिल साइना नेहवाल जब फाइनल खेलने उतरी तो उनके सामने दुनिया की नंबर एक और पिछली चैंपियन स्पेन की कैरोलिन मरीन थी और मरीन ने साइना को सीधे गेमों में 21-16 21-19 से हरा दिया। ऐसा लगा जैसे इस मुकाबले में साइना नेहवाल को थोड़ी थकावट थी क्योंकि सीधी सी बात है कि इससे पहले क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया और कड़ा संघर्ष हुआ तो कहीं ना कहीं उनके स्टेमिना पर फ़र्क पड़ा। साइना नेहवाल विश्व चैंपियनशिप में पहली बार फाइनल खेल रही थी, इससे पहले वो 5 बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। कैरोलिन मरीन ने इसी साल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भी साइना नेहवाल को हराया था और निश्चित रूप से उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं ना कहीं साइना नेहवाल पर था। साइना नेहवाल हालांकि इस साल ये माना जा रहा था कि जब भी वो किसी बड़ी प्रतियोगिता में उतरती हैं तो साइना वर्सेस चाइना होता है, लेकिन इस बार महिला एकल मुकाबलों की बात की जाए तो वहाँ चीनी खिलाड़ियों का दबदबा नहीं था, यानी कि सेमीफाइनल में कोई भी चीनी खिलाड़ी नहीं थी। हालांकि जो साइना नेहवाल के पिता हैं हरवीर सिंह, वो कुछ खास निराश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि साइना बेहतर खेली।
साइना का रिकॉर्ड इस लड़की के अगेंस्ट 3-1 का था, 3-2 का हो गया है। वो शुरू से ही मैं देख रहा था वो लड़की थकी हुई थी, बट साइना जो है ठीक खेल रही थी, बहुत अच्छा खेल रही। पहला मैच 16 पे हारने के बाद दूसरे में साइना हमेशा ही आगे थी, लेकिन पीछे आके 2 पॉइंट से मिस्टेक हुआ, निकल गया हाथ से, लेकिन कोई कम नहीं है। जबकि हार भी गई है लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 फिर बन जाएगी और काफी लंबे समय तक रहेगी, देखना।
ये थे साइना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह और वाकई उनका कहना सही है कि साइना नेहवाल ने जिस तरह का प्रदर्शन किया अद्भुत। लेकिन अगर बैडमिंटन के बाद टेनिस के कोर्ट की बात की जाए तो भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस रोजर्स कप में महिला युगल सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई। उन्हें फ्रांस की कैलिन गार्सिया और स्लोवेनिया की कैटरीना सरबोतनिक की जोड़ी ने 6-3 6-2 से मात दी। उधर सेंचुरियन में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है जहां न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 178 रनों का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्टिन गप्टिल के 60, जेम्स निशाम के 28 और कप्तान केन विलियमसन के 25 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 177 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के 30 गेंदबाज कागिसो रबादा ने 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। थोड़ी देर पहले दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 40 रन बना लिए थे।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश कुमार गुप्त खेल की खबरें श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक बार फिर प्रमुख समाचार।
इंडोनेशिया के ट्रिगाना एयर के लापता हुए विमान का मलबा पापुआ के सुदूर इलाकों में मिल गया है। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री ने बताया कि ऑक्सिबिल के बिंतांग इलाके में विमान का मलबा मिला है। विमान में सवार लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठन लश्कर ए जांगवी ने पंजाब प्रांत में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है जिसमें पंजाब के गृह मंत्री शुजा खानजादा की मौत हो गई। इस हमले में कुल 12 लोगों की मौत हो गई और करीब कई लोग घायल हो गए। सीरिया में दमिश्क के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर दौमा में सेना के हवाई हमलों में करीब 80 लोगों की मौत हो गई है। कोलकाता में भ्रष्टाचार निरोधी दल ने एक स्थानीय इंजीनियर के हमले से के घर से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। इंजीनियर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में फिलहाल इतना ही। आपसे 9:30 बजे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम घटना चक्र में। तकनीकी सहयोगी अजीत सारथी के साथ समीर आत्मज मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।